Torno a casa già e contro due sui maturati del carro. Quindi per me è stato questo fatto di a cercare un punto di passare. Ora è stato lasciato di osservare. Io ho cercato la madre che chi sta andando, chi chiama da me, questo momento chiama da me. Oggi ho anche fatto potere, un po' che sarà se mi mangia io. Questi quando si vivono, धर्म के बिना मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं है और जब धर्म का नाश हो जाता है तो फिर मनुष्य जाति खत्म हो जाती है। कुलक्षय कुलक्षति कुल धर्म आसन आना धर्म नष्टि कुलम कृष्णम अधर्म कुलम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गीता में कहते हैं कि जब कुल का क्षय हो जाएगा, जब सारे बुजुर्ग जो हमारे समाज में उनका देहांत हो जाएगा तो धर्म का नौजवानों को नवे युवतियों को कौन सिखाएगा। और इस प्रकार से कुल का क्षय हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म नष्ट होने से सारे समाज का पतन हो जाएगा। धर्म नष्ट कुलम कृष्ण अधर्मम विभवत्तिका। तो कुल क्षय से अधर्म आता है, अधर्म विभवा कृष्ण। जब अधर्म हो जाता है तो उस समय सारे जो औपनिक कार्य हैं वो भी खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे से। स्त्रीषु दुष्टा सुवाष्य जायते वर्ण संकर। स्त्री जाति प्रदूषित हो जाती है जब धर्म नष्ट हो जाता है तो, और जब स्त्री जाति नष्ट हो जाता है, जब प्रदूषित हो जाती है तो एक नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है सारे समाज में। संकर कुल ध्यान कुलस्थित पतंति पितर वेशा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन बताते हैं गीता में कि जब ऐसे वर्ण संकट हो जाते हैं स्त्रियों के प्रदूषित होने से, वर्ण संकट मतलब जो संतान धार्मिक नहीं हो, जो धर्म के नियमों के उल्लंघन करके जिनका उत्पन्न हुआ है इनको वर्ण संकर कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण संकर के निर्मिति से क्या होता है, नरक आयोग एक नरक जैसी स्थिति समाज में बन जाती है। कुल ध्यान कुल कुल का नाश हो जाता है और जो कुल के नाश करने वाले हैं उनका भी नाश हो जाता है। पतंति पितरों की ऐशाम पितरों का जो हमारे पितर हैं उनका पतन हो जाता है। लुप्त पिंड उदक क्रिया। जब पिंड और उदक अर्थात शास्त्र ये नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, सारे पितरों का पतन हो जाता है। शास्त्र में दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक है पिंड और दूसरा है तर्पण। पिंड मतलब जब हम चावल के गोले इत्यादि हम अन्न अर्पण करते हैं पितरों को, और दूसरा है जल अर्पण करना। जल अर्पण करने की पद्धति को तर्पण कहते हैं। तो पिंड और उदक, उदक मतलब पानी जल। लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण अगर मैं युद्ध करूंगा तो हमारे युद्ध भूमि में जो भी सारे बुजुर्ग हैं वो मर जाएंगे, जो नवयुवक हैं वो भी मर जाएंगे। तो फिर धर्म को सिखाएगा कौन, धर्म का पालन कौन करेगा, और स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? इस प्रकार से जब सारे बुजुर्ग सारे पुरुषों की हत्या हो जाएगी, फिर स्त्री जाति प्रदूषित हो जाएगी, और इस प्रकार से वर्ण संकर अनचाहित जो संतान है उनकी उत्पत्ति होगी, और सारे जो धार्मिक क्रियाएं हैं समाज के कल्याण के लिए जो कार्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यहां तक कि पिंड और उदक पितरों को वो भी नहीं दिया जाएगा, और इस प्रकार से सारे पितर जो हैं वो बड़े असंतुष्ट होकर उनका पतन हो जाएगा। श्राद्ध कौन दे सकता है? पुत्र दे सकता है। ये पुत्र शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। एक नरक है जिसका नाम है पु, पुन्नाम। पुन्नाम नरकात त्रायते, त्रायते मतलब जो जिनसे रक्षण करता है, इति पुत्रः। तो पु और त्र, पु मतलब नरक का एक नाम है और त्र त्रायते शब्द से आता है। तो पु और त्र, जो पु से जिसका रक्षा करता है वो है पुत्र। तो पुत्र किसकी रक्षा करता है नरक से गिरने के लिए? अपने जो पूर्वज हैं जिनकी वजह से उसको शरीर मिला है, उनका पतन कहीं कुछ पाप के वजह से हो जाए, इसका संरक्षण करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। भगवद गीता में बहुत सरल उपदेश दिया हुआ है कि हम सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, और शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, पुराना शरीर खत्म हो जाता है, दूसरे शरीर में पुनः कर्म आरंभ हो जाते हैं, और फिर आगे चल के आत्मा उस शरीर को भी त्याग देती है और फिर तीसरे शरीर को धारण करती है, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो जैसे जैसे कर्म किए जाते हैं किसी शरीर में, उस हिसाब से या उस आधार पर अगला शरीर मिलता है। तो कर्म हमारे वो एक कीमत है जिससे हम अगला शरीर खरीद लेते हैं। इस प्रकार से यहां जीते जी कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, कभी बुरे कर्म करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं। यहां भौतिक जगत में हर साधारण कार्य में पाप करने की संभावना रहती है। समझ लीजिए कि आप चल रहे हैं सड़क पर और चींटियां आपके सड़क में आ गईं, तो आप उनकी हत्या करते हैं। एक गृहस्थ जीवन में साधारण घर में रहते हुए अलग अलग तरह के पाप कार्य होते हैं, इनको पंच महासून कहते हैं। पंच महासून मतलब पांच तरह के महापाप होते हैं जो हर एक घर में होने ही चाहिए, होते ही है। जैसे कि झाड़ू मारना। आप पूछेंगे झाड़ू मारना ये कैसे पाप हुआ? झाड़ू मारना पाप नहीं है, लेकिन झाड़ू मारते समय कई कीटाणु मर जाते हैं, वो पाप हो जाता है। तो झाड़ू मारे बगैर तो आप घर में रह नहीं सकते, झाड़ू तो मारना ही है, घर को साफ रखना है। दूसरी बात है किसी पानी को या किसी चीज को गर्म करना। गर्म करते हैं, उबालते हैं, या पानी या कोई और चीज एक मटके से दूसरे मटके में डालते हैं, या हम चक्की पीसते हैं, या हम किसी चीज को हम उखल में हम उसको पीसते हैं। इन सब चीजों में कुछ न कुछ प्राणियों की हत्या होती है, इसलिए पाप कहा जाता है। इसलिए इन पंच महासूनों के लिए पंच महायज्ञ बताए जाते हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ बताए जाते हैं, धार्मिक क्रियाएं बताई जाती हैं, जिनसे कि
इनका एक प्रकार का प्रायश्चित हो जाए। कहने का मतलब है कि अनजाने में भी जब इतने सारे पाप होते हैं हर एक प्राणी के, हर एक व्यक्ति के यहां पर, और जानते हुए न जाने और कितने लोग पाप करते हैं, तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है उसके साथ में वो पुण्य और पाप की पूंजी ले जाता है आगे। पुण्यों का फल और पापों का फल वो दोनों भुगतता है। अगर उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं तो उसे ऊंचे लोक की प्राप्ति होगी, और अगर उसने पाप किए हैं बहुत सारे तो पापों का फल भी उसे भुगतना होगा, चाहे निम्न योनियों में जन्म लेने से या नरक में जाने से। तो इस प्रकार से ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति नरक से बच सकता है। कोई व्यक्ति ज्यादा पुण्यवान भी होगा लेकिन अनायास उसने कहीं पाप किए भी होंगे तो उन पापों का फल भी भुगतने के लिए शायद उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़े। कहना बहुत मुश्किल है किस चीज के लिए किस व्यक्ति को कब नरक जाना पड़े। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक झूठ बोला और झूठ बोलने की वजह से युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। केवल दर्शन किया क्योंकि एक ही झूठ बोला है, लेकिन यह संसार में लोग कितना झूठ बोलते हैं, सुबह से रात तक, दिन कितने, बचपन से बुढ़ापे तक कितने सारे झूठ बोलते हैं। एक बार जनक महाराज ने एक गाय को चरते हुए रोका गोचर भूमि में, तो उस वजह से उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा। वो उनको आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों नरक का दर्शन कर रहा हूं, मैं तो इतना पुण्यवान व्यक्ति हूं। तो यमराज ने कहा कि हाँ, ज्यादातर तो आपने बहुत पुण्य किए हैं लेकिन ये एक पाप आपने किया था। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे पापों से भी नरक का दर्शन करना पड़ता है, और यहां जनसाधारण जो है इतने सारे पापों में लगी हुई है, जानते हुए और न जानते हुए, तो उनको नरक में कितना समय वास करना होगा। और आजकल कलयुग के समय में लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि पाप क्या है, और जानते भी हों तो मानते नहीं हैं। कोई कहेगा कि अरे मांसाहार करने में क्या गलती है, कोई कहेगा शराब पीने में क्या गलती है। तो जो सबसे बड़े से बड़े पाप हैं कलयुग में, लोग उसको अच्छी तरह से मानते हैं कि ये एक प्रगतिशील समाज के लक्षण है। अगर आप दारू शराब नहीं पिएंगे, आप मांसाहार नहीं करेंगे, इधर उधर बड़े बड़े होटलों में घूमेंगे नहीं, जुआ नहीं खेलेंगे, सिनेमा नहीं जाएंगे, तो आप पिछड़े हुए आदमी हैं। अगर आपको फॉरवर्ड आदमी बनना है तो आपको ये सारी चीजें करनी है। तो साधारण आदमी भी ये सब करने लगते हैं, मानते नहीं है कि ये कोई पाप चीज है, और अगर कोई बोलते भी हैं तो मानते नहीं है। तो इस प्रकार से जन साधारण में बहुत सारे पाप होते हैं जाने अनजाने में। तो निश्चित है कि आजकल की पीढ़ियों में रहने वाले लोग, कलयुग के लोग, वो स्वाभाविक है कि बहुत सारे पाप करेंगे जिसकी वजह से उनको नरक में कहीं ना कहीं जाना पड़े, और हो सके वो आगे चल के किसी अगले जन्म में भी पाप करें जिनकी वजह से उनको नरक में जाना पड़े। हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्मों में पाप किए हों जिनकी वजह से उनको नरक जाना पड़े, केवल इस जन्म की बात नहीं है। तो इस तरह से नरक जाने के कारण बहुत हो सकते हैं किसी जीव के लिए, किसी आत्मा के लिए। तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पितरों को ऐसे नरक जाने से बचाए, श्राद्ध देने, श्राद्ध करने से। तो ये एक प्रथा है, एक धार्मिक क्रिया है जो गृहस्थ जीवन में हर एक पुत्र को करना चाहिए। तो श्राद्ध अर्पण करने से उसको वो पुण्य मिल जाता है, पितरों को वो पुण्य मिल जाता है जिससे कि उनके वो पाप क्षीण हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको नरक में जाना पड़े। और इस प्रकार से पितरों की सेवा करने की वजह से जो पुत्र होता है उसकी पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है, और हो सकता है बहुत ज्यादा जो ध्यान से सावधानी से ऐसे सब करता है उसे पितृलोक की प्राप्ति हो जाए। पितृलोक एक ऊंचा लोक है जहां यमराज रहते हैं, तो ऐसे लोक की प्राप्ति भी उसे हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि श्राद्ध ये हमारे वैदिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है और इसके लिए लोग गया जाते हैं, कोई त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, कोई ऐसे अलग अलग स्थानों में जाते हैं। जहां तक गया का सवाल है, गया में विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु वहां पर विराजे हैं गया में, और वहां पे सभी लोग जाते हैं, विष्णु को भोग अर्पण करते हैं नैवेद्य, और फिर वही जो विष्णु प्रसाद होता है वो पितरों को अर्पण करते हैं। पितरों को कभी भी भोग नहीं अर्पण करना चाहिए, केवल भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि प्रसाद अर्पण करना ये एक नियम है पितरों को। पितरों को यूं ही साधारण भोजन नहीं देना चाहिए, विष्णु प्रसाद अर्पण करने से उनको आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो ये है श्राद्ध का, जो श्राद्ध की क्रिया है। श्राद्ध श्रद्धा से उत्पन्न होता है, श्रद्धा शब्द, जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध है। तो इस प्रकार से लोगों को ऐसी क्रियाएं करना आवश्यक है जो पितरों के प्रति जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, ऋण है, वो समाज में केवल एक ऋण है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऋण होते हैं। देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम, ये छह प्रकार के ऋण होते हैं। हर एक प्राणी को देवताओं के प्रति ऋण होता है, क्योंकि देवता गण हमें सब कुछ देते हैं जो कि हमें निसर्ग में आवश्यक होता है, जैसे कि हवा, पानी, रोशनी, उष्णता, जो भी कुछ है प्रकृति में हम देखते हैं जिसकी सिवाय हम जी नहीं सकते हैं, ये सब देवी देवताओं की देन है। देवी देवता कौन है? ये भगवान के सेवक हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए वो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड के ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, और वो ये सब कार्य चलाते हैं, देखते हैं कि यहां के प्राणियों के लिए सारी व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं, ये देखना देवी देवताओं का काम है। तो स्वाभाविक है कि जब देवी देवता हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो हमें इनके प्रति ऋण होगा और इस ऋण को हमें चुकाना है। देवी देवताओं के प्रति जो ऋण होता है वो कर्म कांड के अलग अलग तरह के जो यज्ञ होते हैं, उपासनाएं होती हैं, उनको करने से होता है। ऋषि, दूसरा ऋण जो हमारा है वो ऋषियों के प्रति है, जो इतने सारे साधु हुए हैं आज तक समाज में। ऋषियों ने क्या किया है समाज के लिए? उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय मनुष्य जीवन का क्या मतलब है? मनुष्य समाज जिसमें कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, धार्मिकता नहीं है, ऐसे समाज में और पशु समाज में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऋषिगण ये सब हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे कि मनुष्य समाज बने और पशु समाज नहीं बने, और ऋषियों के द्वारा ही हम हमारे जीवन की परिपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हम आत्मा नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और किस तरह से ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छूटना चाहिए, और हमें निरंतर हमारे सारे समस्याओं का समाधान करके भगवान के धाम में जाना चाहिए। ये ज्ञान केवल ऋषि देते हैं, इसके लिए हम ऋषियों के प्रति भी हम ऋणी हैं। फिर भूत, भूत मतलब सर्व प्राणी, भूत मतलब भूत प्रेत पिशाच, वो भूत नहीं। संस्कृत में भूत शब्द के अर्थ कई हो सकते हैं, तो एक अर्थ ये है, भूत मतलब सारे प्राणी। सारे प्राणियों के प्रति हम ऋणी हैं। देखिए कितने सारे कीड़े हैं, कितने सारे प्राणी हैं, जैसे गाय है, बैल है, वो हमें कितना मदद करते हैं, वो बैल खेती करता है, गाय हमें दूध देती है, पक्षियां भी कितना सब हमें मदद करते हैं, और यहां तक कि मिट्टी के अंदर जो कीटाणु है उनकी वजह से ही, उनके सहायता से जो है वो अनाज उगता है। जैसे भंवरे होते हैं, भंवरों की वजह से जो बीज होते हैं फूलों के, अनाज के, वो इधर उधर बिखर जाते हैं और फिर फसल अच्छी तरह से हो जाती है। इस प्रकार से देखेंगे कि नाना प्रकार के प्राणी हैं, पक्षी, पशु इत्यादि, कीड़े, इन सब का योगदान है। कुछ न कुछ ये प्राणी हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इन सारे प्राणियों के प्रति भी हम ऋणी हैं। आप तो मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारों के प्रति भी हम ऋणी हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, हमें संग देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बहुत कुछ ऋण हमारा उनके प्रति होता है। ऋणाम मतलब मनुष्य समाज, कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, मनुष्य समाज में ही रहेगा, और मनुष्य समाज में रहते हुए हम कितने सारे दूसरों मनुष्य के ऊपर निर्भर हैं। एक साधारण कार्य समझिए, हम यहां बैठे हैं, हम कितने लोगों के ऊपर निर्भर हैं। अभी इस समय किसी ने यह माइक्रोफोन बनाया है, इसलिए हम सब सुन रहे हैं। आप यहां आए, कोई बाहर गांव से आए हैं, कोई बेलगाम से आए हैं, कोई आप रास्ता लेकर आए, रास्ते किसी ने बनाए हैं, रेलगाड़ी से आए तो रेलगाड़ी किसी मनुष्य ने बनाए हैं, आप रिक्शा में बैठकर आए, स्कूटर में बैठ के आए तो वो भी किसी मनुष्य ने बनाए हैं। तो केवल यहां आने के लिए हम कितने लोगों के ऊपर निर्भर हैं, यहां बैठने के लिए कितने लोगों के ऊपर निर्भर हैं। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य समाज के प्रति हम ऋणी हैं। मनुष्य समाज का जो ऋण है उसको चुकाने के लिए हमें अतिथि सेवा करनी चाहिए। अन्य प्राणियों के प्रति जो हमारे अंदर हमारे ऋण है उसको उनको खिलाने से हमारा ऋण चूक जाता है। जो पितरों की सेवा है वो हम श्राद्ध इत्यादि करने से चुका सकते हैं। जो ऋषिगण हैं उनके प्रति जो ऋण हमारा होता है वो हम ब्रह्मचर्य के पालन, वेदों का पाठ करने से हम चुका सकते हैं। और देवताओं के प्रति जो ऋण है वो ऐसे कर्मकांड के यज्ञ, उपासना करने से हम चुका सकते हैं। देव ऋषि भूत आप्त ऋणाम पितृणाम, तो पितृणाम ये छठा ऋण है जिसको श्राद्ध से ये ऋण चुकाया जा सकता है। तो देखिए कि छह प्रकार के ऋण लेकर हम सब जन्म लेते हैं, ऋणानुबंध, और ये ऋण जब तक हम नहीं चुकाएंगे हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम ये ऋण चुकाते जाते हैं वैसे वैसे हम और ऋण भी एकत्र करते जाते हैं, इसलिए हम हमेशा ऋणी ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने चार व्यक्तियों से उधार लिया है, इससे दस रुपया, दस रुपया, दस रुपया, दस रुपया, हमने क्या किया, इसको दस रुपया वापस दे दिया लेकिन दूसरे से दस रुपया लेकर, तो इससे दस रुपया लिया, इसका ऋण चुका लिया, वो खुश हो गया लेकिन वो अभी तनाव में है कि मेरा पैसा ये देगा कि नहीं देगा, तो उसको खुश करने के लिए और तीसरे व्यक्ति से लेकर और उसको दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऋण तो चुकाते हैं लेकिन नए ऋण भी उत्पन्न होते जाते हैं, ये है संसार। तो इस प्रकार से जब तक हम पूरी तरह से ऋणों को चुकाते नहीं, हमेशा के लिए हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो ऐसे कर्म कांड करता है, श्राद्ध करता है, यज्ञ करता है, उसकी हालत यह है। तो जो लोग धार्मिक नहीं हैं उनकी हालत क्या होगी, वो तो ऐसे है जैसे चार लोगों से उधार लेता है और उनका तो पैसा लौटाता नहीं है और दस लोगों से हर रोज उधार लेते रहता है, कल और पांच लोगों से लिया, परसों और छह लोगों से उधार लिया, उसका ऋण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, एक कभी ऋण चुकाता नहीं है, वो एक अधार्मिक आदमी की, पापी व्यक्ति की दशा है। जो साधारण धार्मिक लोग होते हैं वो ऋण चुकाते हैं, नए ऋण बनाते हैं, ऋण चुकाते हैं, नए ऋण बनाते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या ये ऋणों से मुक्त होने के लिए, हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए कोई मार्ग है क्या? तो श्रीमद् भागवत में बताया है, है, अवश्य है। देव ऋषि भूतापितृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नव योगेंद्र बताते हैं कि जो व्यक्ति सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। गतो मुकुंदम मतलब वो मुकुंद श्री कृष्ण के पास जाता है। परिहृत्य कर्तम, हो सकता है कि अपने सारे निहित कार्यों को छोड़े, या नहीं कि छोड़े, लेकिन पूरी तरह से जाकर सर्वात्मना यह शरणम, पूरी तरह से भगवान श्री मुकुंद या कृष्ण का शरण लेता है। शरण्यम, कृष्ण का और एक नाम है शरण्यम, क्योंकि केवल वही शरण लेने लायक है। हम लोग यहां संसार में अलग अलग लोगों का शरण लेते हैं, पुलिस का, डॉक्टर का, बैंक का, हमारे पैसे का, हमारे रिश्तेदारों का, परिवार का, बच्चों का, माता पिता का, हमारे नेताओं का हम शरण लेते हैं, लेकिन वास्तव में शरण लेने लायक एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो नव योगेंद्र बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाकर पूरी तरह से उनके शरण में जाता है, शरण में जाने का यह मतलब नहीं कि व्यक्ति को सन्यासी बनना चाहिए, शरण गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, किसी भी जीवन के अवस्था में भगवान के शरण हम ले सकते हैं। शरण का मतलब है आश्रय लेना, इसलिए कुटुंबिक जीवन को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृह में स्थित होकर भगवान का आश्रय लेना, चार आश्रम बनाए हैं भगवान ने, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, तो चारों ये आश्रम है। आश्रम मतलब जहां भगवान का आश्रय लिया जाता है, आश्रय मतलब शरणागति। तो अगर हमारी अवस्था में, हमारी परिस्थिति में हमने भगवान का शरण लिया तो क्या होता है? नव योगेंद्र बताते हैं, न किंकरो न अयम ऋणी च राजन, कि हे राजा निमि, ये जो व्यक्ति हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से शरण लेते हैं भगवान कृष्ण के, उनको और कोई ऋण नहीं होता है, नहीं वो किसी के किंकर या दास हैं। किंकर मतलब सेवक, दास। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, जो भक्त हैं, जो उन्होंने शरण लिए हैं, उनके लिए कोई ऋण बच नहीं जाता है, सारे ऋणों से मुक्त हो गए हैं वो। जैसे कभी 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 हम देखते हैं कि कोई आदमी ये बैंक से थोड़ा लोन लेता है, कर्जा लेता है कुछ व्यवसाय चालू करने के लिए, और दूसरे बैंक से भी कुछ लेता है, तीसरे आदमी से भी कुछ लेता है, और फिर उसका व्यवसाय डूब जाता है, फिर वो सरकार के पास जाता है, फिर सरकार कहती है कि ठीक है आपकी ऐसी परिस्थिति है तो सारे ऋणों से मुक्त, फिर वो बैंक को चिट्ठी दे देती है, चलो इसको ऋण माफ कर दो। तो सरकार जब ऐसे नोट लिखती है तो बैंक को मानना पड़ता है, बैंक भी सरकार के है, तो फिर वो भी कहते हैं ठीक है ऋण से मुक्त। केवल क्या करो, ठीक है तुम्हें 10 लाख देना है, चलो 10,000 तो दे दो, कुछ तो दे दो, मामला हम खत्म कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शरण नहीं लेता, चाहे वो धार्मिक भी क्यों ना हो, उसे इन सारे 6 श्रेणियों के प्रति ऋण चुकाते रहना होगा जन्म जन्मांतर। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शरण लेता है, वो एक ही क्षण में उसके सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवतागण आप इसको ऋण से मुक्त कर दीजिए, ऋषिगण आपका ऋण चुका दीजिए, हे भूतगण, हे मनुष्य समाज, आपके प्रति जो इसका ऋण है वो खत्म हो गया। न किंकरो न अयम ऋणी, अभी किसी का ऋणी नहीं बनता है वो, लेकिन उसको क्या टैक्स चुकाना पड़ता है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। अगर वो अपने हृदय से भगवान की सेवा में लग जाएगा, भगवान के शरण में जाएगा, उसके भगवान की सेवा के अलावा और कोई दूसरा ऋण नहीं रहता है। और इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के वहां रहने से ऋण की बात तो दूर है, वो सबका उद्धार कर देता है। प्रहलाद महाराज का नाम तो आप सबने सुना है, भक्त प्रहलाद। जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, वो इतने प्रसन्न हुए प्रहलाद के ऊपर कि उन्होंने बार बार प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं आपके पास व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा केवल सेवा के लिए कर रहा हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी नरसिंह देव कहने लगे कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने सुंदर स्तुति की भगवान की, और फिर आखिर में प्रहलाद ने कहा कि आप कुछ मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो मैं ये वरदान मांगता हूं, मेरे पिता हिरण्यकश्यप पापियों में से शिरोमणि, सबसे बड़े पापी, और उन्होंने सारे ब्रह्मांड में सबके प्रति अत्याचार अन्याय किया था, और मेरे खिलाफ तो उसने बहुत अत्याचार किया वो तो है ही, लेकिन आपके प्रति भी कितना अत्याचार किया उसने। हालांकि जब आप यहां प्रकट हुए और आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यप को आपके गोदी में रख लिया, जैसे ही आपने उनका स्पर्श किया वैसे ही हिरण्यकश्यप मेरे पिता पूरी तरह से शुद्ध हो गए केवल आपके स्पर्श से। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं कि क्योंकि उन्होंने आपके प्रति और आपके भक्तों के प्रति इतना अपराध किया है, इतनी हिंसा की है, इसलिए आप कृपया उसे उन्हें क्षमा कर दें, यही मेरी प्रार्थना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ये प्रहलाद के गुण होते हैं। हालांकि प्रहलाद के पिता इतने बड़े पापी थे और प्रहलाद के प्रति ही इतना अत्याचार किया था, लेकिन प्रहलाद के मन में कभी भी शत्रुता की भावना नहीं रही, द्वेष की भावना नहीं आई, अपने पिताजी का कल्याण ही चाहते थे वो। ये है भक्त के लक्षण, भक्त के गुण देखिए। कोई व्यक्ति अगर भक्त को मारना चाहे, जान से भी मारना चाहे, लेकिन वो भक्त उस आदमी के प्रति कभी भी घृणा या द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसका हृदय हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना से भरा हुआ रहता है। तो नरसिंह देव भगवान ने उस समय उत्तर दिया प्रहलाद महाराज को, और वो कहने लगे कि प्रहलाद तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा भक्त हो जाता है वो तो मेरे धाम को लौटकर आता ही है, लेकिन 3 × 7 उसकी पीढ़ियां जो हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। 3 × 7 मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 3 × 7 मतलब 3 जन्मों में आपके 7-7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मतलब अगर इस जन्म में कोई भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बना तो इस जन्म में उसके जो पूर्व 7 पीढ़ियां हैं, मतलब उसके पिता, उसके माता, पिता के पिता माता, माता के माता पिता, उनके पिता, उनके दादा के दादा दादी, उनके पिता, ऐसे 7 पीढ़ियां जाते जाइए आप, ऐसे 7 पीढ़ियां। फिर पिछले जन्म में वो जो भी था आदमी, उस जन्म में, पिछले जन्म में जो उसके माता पिता थे, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे 7 पीढ़ियां, और उसके पहले जन्म में वो जो व्यक्ति था उसके 7 पीढ़ियां, इसलिए 3 × 7। 21 पीढ़ियां इनका उद्धार हो जाता है। केवल एक व्यक्ति अगर कुल में भक्त बन जाता है भगवान श्री कृष्ण का, तो देखिए कितनी शक्ति होती है भक्ति में। अभी अगर हम कोई श्राद्ध करें, कोई कर्मकांड करें, कोई दूसरा यज्ञ करें, कोई प्रायश्चित करें, ऐसे करने से केवल क्षणिक लाभ मिल जाता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो थोड़े समय के लिए पितरों को लाभ मिल जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है तो हमेशा के लिए नहीं वो केवल ऋणों से मुक्त हो जाता है, लेकिन सारे पूर्वजों का भी वो उद्धार कर डालता है, 7 पीढ़ियों तक का। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। और जब कोई भक्त बनता है तो भगवान उस व्यक्ति के प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो उनके सारे पीढ़ियों का उद्धार कर डालते हैं, क्योंकि भगवान ऋणी होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति भक्त नहीं होता वो ऋणी रहता है दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति, लेकिन जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, और फिर भगवान उस व्यक्ति से जो भी संबंधित लोग हैं या वो स्थान है उन सब का उद्धार करते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे तो उनके एक निकट के भक्त थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। वो बड़े ब्राह्मण थे, नीलाचल ओरिस्सा राजा प्रताप रुद्र के मुख्यमंत्री थे, उनके उपदेशक थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे, वो केवल निराकार की उपासना करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संग को और कृपा को प्राप्त करके वो एक महान भक्त हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के परिवर्तन को देखकर सारा राज्य विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे आदमी को ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम के सन्यासी ने भक्त बना दिया, कितने आश्चर्य की बात है। तो एक बार ऐसे हुआ कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाया, निमंत्रण दिया प्रसाद के लिए, भोजन के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों महान कृष्ण भक्त बने थे, और उनकी जो पुत्री है वो भी एक अच्छी भक्त थी, लेकिन उनके जो दामाद थे, मतलब उनके पुत्री की जो पति थे, वो बड़े द्वेषी व्यक्ति थे, सबसे द्वेष करते थे, सबकी निंदा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु से भी बहुत द्वेष करते थे। उनके दामाद का नाम था अमोघ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि अगर मैं चैतन्य महाप्रभु को मेरे घर में बुलाऊंगा और अमोघ अगर वहां पर रहा तो वह अवश्य चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने वाला है, कोई ना कोई पॉइंट निकालकर वो निंदा करेगा। किसी कोई साधारण व्यक्ति भी आपके घर में अतिथि के रूप में आए तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सम्मान देकर भेजना चाहिए, एक साधारण आदमी हो उतना भी। अगर कोई भक्त आए तो और ज्यादा आपको स्वागत करना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर स्वयं भगवान आपके घर में आए तो कितना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में आने वाले थे, इसलिए भट्टाचार्य बड़े चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अमोघ यहां पर आकर कुछ अपमान करे महाप्रभु का, क्योंकि उनको अमोघ का स्वभाव क्या है वो मालूम था। तो उन्होंने बड़ा ध्यान रखा दरवाजे के ऊपर कि कहीं अमोघ अचानक चले ना आए। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर उन्होंने प्रसाद दिया, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद का सेवन कर रहे थे, और अचानक अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी ने उनको बुलाया कि देखिए ये भी दे दीजिए। तो अंदर रसोई घर में गए कुछ पदार्थ लाने के लिए, उस समय अमोघ ने मौका पकड़ लिया, सीधा अंदर घुस के आए और देखा, अरे रे 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 रे, एक सन्यासी है, देखो कितना खाते हैं। हमने पहले सुना था कि सन्यासी लिए सन्यासी इतना खाते हैं, इतना खाना चाहिए सन्यासी को। तो उसी क्षण सर्वम भट्टाचार्य अंदर आए और ये वाक्य सुना। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल गुस्से नहीं हुए, लेकिन सर्वम भट्टाचार्य बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पास में रखा हुआ डंडा लिया और मारने के लिए आए अपने दामाद को, और अमोघ वहां से भाग गए, बहुत जल्दी भाग गए। वो जवान थे, सर्वभौम भट्टाचार्य बूढ़े थे, तो स्वाभाविक है कि वो पकड़ नहीं पाए उनको। सर्वभौम भट्टाचार्य इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा कि आज से मैं समझता हूं कि मेरी बेटी विधवा हो गई, मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए, इसलिए दामाद की मृत्यु हो जाए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इतने इतना बड़ा अपराध किया आज। एक साधारण अतिथि नहीं, साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान मेरे घर आए हैं और ये जो बदमाश है इसने इतना अपमान किया है। सर्वम भट्टाचार्य इतने विचलित हो गए, वो सही ढंग से सेवा भी नहीं कर पाए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी, उनको शांत किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगले दिन अमोघ को उस पाप का फल मिला, उसको बहुत भयंकर कॉलेरा की बीमारी हो गई और मृत्यु के शैया पर वो लेट रहा था और कोई उपाय नहीं था। इतने सारे वैद्य आए, उन्होंने दवाइयां दी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। सर्वम भट्टाचार्य बोलने लगे, जाने दो उसको, अच्छा हो गया, उसने जो पाप किया उसका फल उसको मिल रहा है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु को खबर पहुंची, तो चैतन्य महाप्रभु सीधे अमोघा के घर में गए और अमोघ के शैया पर जाकर बैठे पास में। उन्होंने अमोघ के हृदय के ऊपर अपने कर कमल अपने हाथ रखे और कहने लगे, अमोघ तुम तो इतने अच्छे ब्राह्मण हो, तो यहां तुम्हारे हृदय में द्वेष के लिए तो कोई जगह होनी नहीं चाहिए, तो द्वेष से मुक्त हो जाओ। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा, अमोघ द्वेष से पूरी तरह से मुक्त हो गए, और इतना ही नहीं, पूरी तरह से उसके हृदय में कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो गई और सारे भक्ति के लक्षण प्रकट हो गए, और जो कॉलेरा की बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सारे लोग देखकर खुश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन सर्वम भट्टाचार्य बड़े उदास हो गए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, यह व्यक्ति मेरा दामाद है वो सही है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती तो मेरी बेटी विधवा हो जाती, वो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपने ऐसे क्यों किया कि ऐसे पापी व्यक्ति को आपने बचाया। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कहे नहीं। सर्वम भट्टाचार्य ने सोचे, ये भगवान इतने कृपालु हैं कि अमोघ जैसे व्यक्ति को भी उद्धार वो कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे तात्पर्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को क्यों ऐसे बचाया, अमोघ के ऊपर इतनी कृपा क्यों की? क्योंकि अमोघ का संबंध उनके एक शुद्ध भक्त से था। हालांकि अमोघ भक्त नहीं था, और भक्त नहीं होने की बात तो दूर है, वो तो अपराधी था, पापी था, लेकिन फिर भी उसका संबंध भगवान के भक्त के साथ था। तो भगवान ने केवल ये देखा, ये व्यक्ति जितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन मेरे भक्त से संबंध इस आदमी का है, इसलिए मुझे उसका उद्धार करना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त का संबंधी भी होता है और अगर वो व्यक्ति पापी है फिर भी भगवान उसका उद्धार करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति भक्त है और उसके सगे संबंधी पापी नहीं है, अच्छे लोग हैं, पुण्यवान हैं, तो उनका और कितना उद्धार हो जाएगा। ध्रुव महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। ध्रुव महाराज ने बहुत सारी तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। भगवान प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हुए और ध्रुव महाराज को उन्होंने कृपा दे दी। ध्रुव महाराज ने भी कुछ मांगा नहीं भगवान से, जैसे कि प्रहलाद ने भी नहीं मांगा था। और बाद में भगवान ने ध्रुव महाराज को अपने धाम में बुला लिया, वैकुंठ में बुला लिया। इस जगत को कुंठ कहते हैं, भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं। कुंठ मतलब चिंता कष्ट, तो ये जगत में केवल चिंता और कष्ट है, लेकिन भगवान का धाम है वैकुंठ, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उस समय जब ध्रुव महाराज के मृत्यु का समय आया, वो अपने विमान में सवार होकर यहां पर आए। और उनका विमान कैसे था, हमारे यहां आवाज करने वाले ऑटो रिक्शा गाड़ी के तरह नहीं, नहीं हमारे भयंकर वो जंबो जेट एरोप्लेन की तरह, हवाई जहाज की तरह नहीं, बहुत ही सुंदर पक्षियों के द्वारा आकाश पथ से वो आए। और उस दृश्य को देखकर ध्रुव महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और फिर विष्णु दूतों ने कहा कि हे ध्रुव महाराज, क्योंकि आप भगवान विष्णु के इतने शुद्ध भक्त हैं, हम आपको हमारे स्वामी के धाम में ले जाने के लिए आए हैं, तो आइए हमारे साथ, अभी हमेशा के लिए इस दुख भरे भौतिक सागर को आप छोड़ सकते हैं और भगवान के साथ सदा निवास कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज का शरीर उस समय परिवर्तित हो गया, जो उनका भौतिक शरीर था वो पूरी तरह से परिवर्तित होकर एक आध्यात्मिक स्वर्ण रंग का शरीर बन गया, जो अति तेजस्वी था। और जैसे ही ध्रुव महाराज उस अद्भुत विमान में चढ़ रहे थे, उनको याद आया कि अरे मेरी माता सुनीति देवी, उनका क्या होगा। वैसे जब ध्रुव महाराज बच्चे थे 5 साल के, तो उनके विमाता ने, मतलब उनके पिताजी के दूसरे पत्नी ने ध्रुव का बहुत अपमान किया था। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए 5 साल का ध्रुव जंगल में गया था तपस्या, क्योंकि उसे एक अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो वहां पर 1000 साल उन्होंने राज्य किया। राज करने के बाद विष्णु दूत उनको वैकुंठ वापस लेने के लिए आए। तो इतने सारे साल, इतना सारा समय चला गया था, बीत गया था। तो उस समय जंगल में जाने के लिए जो उनको सलाह है वो उनकी मां ने दिया था, क्योंकि ध्रुव महाराज इतने दुखी हो गए थे कि मेरे विमाता ने मेरा अपराध किया, मैं मेरे पिता राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठना चाहता था, लेकिन मेरी विमाता ने मुझे खींचकर नीचे लाया और कहा कि जब तक तुम मेरे गोदी से, गर्भ से जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम्हें यहां सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैं एक ऐसे राज्य प्राप्त करना चाहता हूं जो कि मेरे पिता के राज्य से भी बड़ा होगा। वो गया, केवल 5 साल का बच्चा। उस समय सुनीति देवी ने कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद जो है, उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो उसी की बात सुनते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी सहायता कौन कर सकता। तो माता ने बताया कि केवल भगवान कर सकते हैं, तुम भगवान को जाके ढूंढो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो मां मुझे भगवान कहां मिलेंगे। तो माता ने बताया कि हमने सुना है कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो जंगल तपस्या करते हैं, वहां उनको भगवान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से सुनीति देवी ने ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन किया था, उनको भगवान के पास भेजा था। इस प्रकार से सुनीति देवी जो हैं, वो ध्रुव महाराज की एक प्रकार से गुरु हो गई, पथ प्रदर्शक गुरु, पथ को प्रदर्शित करने वाले गुरु, जो हमें पहली बार मार्ग दिखाते हैं भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं। तो सुनीति देवी ने केवल इतना मार्गदर्शन किया था उस समय,
आध्यात्मिक दृष्टि से। साथ साथ वो तो ध्रुव की मां थी, बचपन से ध्रुव को बड़ा किया था, पालन पोषण किया था, तो ध्रुव महाराज के हृदय में बड़ा स्नेह था माता के प्रति। तो जब विष्णु दूत ध्रुव महाराज को लेते जा रहे थे, विमान में चढ़ते समय ध्रुव महाराज ने कहा विष्णु दूतों से, मैं अकेले कैसे जा सकता हूं, मैं मेरी माता का क्या होगा सुनीति देवी। उस समय विष्णु दूतों ने तुरंत ध्रुव महाराज का मन पहचान लिया और विष्णु दूतों ने इशारे किया हाथ से और कहा कि देखो वहां और एक विमान उड़े जा रहा है और देखो उसमें कौन बैठा है। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि जैसे ये विमान था वैकुंठ का विमान, उसी तरह से एक सुंदर दूसरा विमान था जिसके ऊपर विष्णु दूत बैठे थे और पीछे कौन बैठे थे, ध्रुव महाराज की माता सुनीति देवी। तो विष्णु दूतों ने कहा कि देखो वहां तुम्हारी मां पहले से ही जा रही है वैकुंठ, तुम चिंता नहीं करो माता की। हालांकि सुनीति देवी की थी, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे और ध्रुव महाराज के मन में इच्छा थी कि मेरी मां का उद्धार हो जाए, तो तुरंत भगवान ने उनका उद्धार भी कर दिया। सुनीति की योग्यता क्या थी, तो ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन किया था, भगवान तक ले गए थे। आगे नारद मुनि इनके गुरु मरे, गुरु ने उनको मार्गदर्शन किया, वो अलग बात, लेकिन सबसे पहले सुनीति देवी ने उनको मार्गदर्शन किया था। और दूसरी बात, उनका संबंध था ध्रुव महाराज के प्रति, वो मां थी ध्रुव महाराज की। तो भगवान ने देखा ये जो सुनीति देवी है, इसने मेरे भक्त के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे भक्त को मेरे पास आने के लिए इसने मदद किया है और मेरे भक्त के हृदय में इसके प्रति प्रेम की भावना है, वो उसका उद्धार भी चाहता है, तो मुझे उसका उद्धार करना ही होगा। इसलिए भगवान ने ध्रुव महाराज के पूछने के पहले ही सुनीति देवी को भी वैकुंठ विमान में बिठाकर वो ले जा रहे थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, शरण जाता है, अनन्य भाव से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है, तो उसके जो सारे सगे संबंधी हैं उन सब का उद्धार भगवान करते हैं, उनको करना ही पड़ता है, भगवान ऋणी हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो कितनी सुंदर बात है। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना यह कोई साधारण बात नहीं है। जन साधारण को यह कल्पना नहीं है कि एक व्यक्ति कुटुंब में कृष्ण भक्त बन जाए तो सारे कुटुंब को कितना फायदा होगा, ये जन साधारण समझती नहीं है। केवल इस कुटुंब को नहीं कि, लेकिन जैसे हमने बताया 21 पीढ़ियों को लाभ होगा, और केवल 21 पीढ़ियां नहीं, जिस स्थान में उस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस स्थान में वो व्यक्ति निवास करता है, ये सारे स्थानों का भी उद्धार हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाते हैं केवल कृष्ण भक्ति करने से। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है उसे किसी भी प्रकार का ऋण नहीं होता है, केवल अपने कृष्ण भक्ति के शक्ति पे, उसके बल पे सारे पितरों का उद्धार हो जाता है, सारे ऋण जो अन्य हैं वो चूक जाते हैं। तो देखिए कृष्ण भक्ति कितनी सुंदर चीज है। और अगर उस भक्त के सगे संबंधी पुण्यवान हो, वो भी अगर भगवान के भक्त हो, तो फिर क्या कहना। तो ये सब कथा हमने क्यों बताई, क्योंकि आज हम यहां पर आए हैं श्री मंजुनाथ अणवेकर के पहले साल के श्राद्ध के लिए। उनका बेटा संतोष इतने अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, अभी संतोष की माता जी भी आ रही, भक्ति कर रही है अच्छी तरह से, और उनके पिता भी बड़े पुण्यवान व्यक्ति थे, तो अवश्य उनकी सदगति ही हुई है। और जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, तो वास्तव में देखा जाए तो केवल उसके भक्त होने की वजह से उसके पूर्वजों का श्राद्ध हो ही गया, ऐसे समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी भक्त जो होते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हैं। किस तरह से मनाते हैं? भक्तों को बुलाकर भक्तों के संग में हरि कीर्तन होता है, हरि कथा होती है, और बीते हुए आत्मा के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उनके आत्मा के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान कृष्ण का प्रसाद सबको बांटते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध माना जाता है। इतना सरल, कृष्ण भक्त, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रसाद, ये चार चीजें अगर हों तो वो श्राद्ध परिपूर्ण श्राद्ध माना जाता है। क्योंकि इससे वास्तव में बीते हुए आत्मा को लाभ होता है, उनको संतुष्टि मिलती है। हाँ, कर्म कांड के दृष्टि से जो श्राद्ध किए जाते हैं, नासिक जाकर, गया जाकर, ठीक है, उनका लाभ ज्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि वो बार बार करते रहना पड़ता है और क्षणिक लाभ मिलता है। लेकिन भक्त होने की वजह से ही परमानेंट लाभ, शाश्वत लाभ मिल जाता है पूर्वजों को। तो ये एक रहस्य है जो कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत में हम सुन सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो क्योंकि संतोष और उनकी माता भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने ये ठीक समझा कि यहां सभी को बुलाएं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंजे, भगवान कृष्ण का नाम यहां पर गूंजे, और यहां पर भगवान कृष्ण का प्रसाद सबको बांटा जाए, यही एक प्रकार का उत्कृष्ट श्रेष्ठ श्राद्ध समारोह होगा। और वास्तव में यह सही विचार है, शास्त्रों के आज्ञा से मिलते जुलता है। और ऐसे सभा में जब हम बीते हुए आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो भी हरि कीर्तन है, प्रसाद है, कथा है, उनके भलाई के लिए हम अर्पण करते हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली है और यही सच्चा श्राद्ध है। तो आज इस अवसर पे हम ये प्रार्थना करेंगे कि श्री मंजुनाथ आणवेकर की आत्मा संतुष्ट रहे, उन्हें और भी सद्गति प्राप्त हो, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भक्ति मार्ग में और प्रगति करें, और भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति के पथ में वो अग्रसर होते रहें, और अंततः भगवान के धाम में वो पहुंच जाए। ये हमारी प्रार्थना आज सब, हम सब अगर करेंगे तो अवश्य भगवान भी उनकी कृपा उनके ऊपर बरसाएंगे। वैष्णव समाज में यही सच्चा श्राद्ध माना जाता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज संतोष ने और उनकी माता ने इतना सुंदर सभा का आयोजन किया है, ऐसी अच्छा व्यवस्था की है श्री मंजुनाथ आणवेकर के लिए। तो उनकी उनके स्मृति में हम आज थोड़े बहुत फिर से कीर्तन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि इस्कॉन संस्था के नियमों को, विधि विधानों का पालन करना ये बहुत मुश्किल है, तो क्या हमें प्रयत्न करना चाहिए? मुश्किल नहीं है। देखिए, अभी आप प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने में कोई मुश्किल है? हम कीर्तन करेंगे, बैठ के अच्छा भजन का आनंद लेंगे, कोई मुश्किल है? आप भक्तों के संग में आइए, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, भगवान का प्रसाद लीजिए, सुंदर कथा सुनिए, कहानियां सुनिए, शास्त्रों से कीर्तन कीजिए, भक्तों के संग में आनंद से रहिए, कोई कठिनाई नहीं, आनंद का जीवन है। जैसे जैसे भक्ति का आनंद हमें मिलेगा, वैसे वैसे सारे नियम खुद ब खुद हम फॉलो कर पाएंगे, कोई मुसीबत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, कौन सच्चे ब्राह्मण है और कौन शूद्र? कलो शूद्र संभव, आजकल कलयुग में ज्यादातर लोग शूद्र ही हैं, हालांकि किसका जन्म ब्राह्मण कुल में हो, किसी का इस कुल में, उस कुल में, लेकिन गुण से तो कलयुग में ज्यादातर लोग शूद्र ही हैं। ब्राह्मण गुणों से पहचाना जाता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी अपने अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। तो असली ब्राह्मण कौन है? शमो दमस तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के गुण हैं, जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं। तो जिस व्यक्ति के ऐसे गुण होते हैं उसको ब्राह्मण हमें मानना चाहिए। शमः मतलब शांत होना चाहिए, दमः मतलब उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, तपः तपस्या करनी चाहिए, शौचम शुद्ध होना चाहिए, क्षांतिर मतलब उसको सहनशील होना चाहिए, आर्जवम मतलब बहुत धार्मिक होना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान उसको होना चाहिए, तब व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो भगवान को जानता है वो सच्चा ब्राह्मण है। केवल एक जनेऊ पहने से, उपवीत पहनने से आदमी ब्राह्मण नहीं बनता, लेकिन उसको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान पे आधार पे उसको कार्य करना चाहिए। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये अगला प्रश्न है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौट कर जाना और उनके धाम में सदैव निवास करना, भगवान और भगवान के भक्तों के संग में। यह है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन खास करके ये महामंत्र जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन भजन करने से बहुत जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और भक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम सब भक्तों के संग में आए, क्योंकि भक्तों के संग में आए बगैर ये सब करना बहुत मुश्किल है। भक्तों के संग में आने से बार बार इन नियमों का पालन करना, विधि विधानों का पालन करना बहुत आसान हो जाता है। जो अभी कठिन लगता है वो बहुत आसान हो जाएगा। भगवान को प्रसाद अर्पण करना रोज, क्या यह जरूरी है? अवश्य। प्रसाद अर्पण करने के बाद बनता है, प्रसाद अर्पण करने के पहले उसको भोग कहते हैं। जब भोग अर्पण किया जाता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं नैवेद्य में, फिर उसको प्रसाद कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ शिष्ट शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। वो कहते हैं कि जो लोग यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं, मतलब भगवान को भोग चढ़ाकर फिर भगवान का अवशिष्ट प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए क्या होता है? मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही, अपने हृदय में जो भी मल है, जो भी पाप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाके। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं और भोजन आत्म कारणात् केवल अपने आनंद के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं, तो क्या होता है? वो बड़े पापी हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात्, ऐसे आत्म कारण से जो व्यक्ति भोजन खाता है बिना भोग चढ़ाए भगवान श्री कृष्ण को, भुंजते तू अघम पापा, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, और ऐसे व्यक्ति पापी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहता है, कहते हैं भगवद गीता में। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाए बिना हम कोई वस्तु खाते हैं तो हम पाप खाते हैं और हमें पापी कहना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में। भगवद गीता स्पष्ट रूप से गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में ऐसा कहते हैं। अगर हम केवल कृष्ण का नाम उच्चारण करें तो हमारे व्यवसाय का क्या होगा? बहुत बढ़ेगा आपका व्यवसाय। गिरायक आपको भगवान बेचते हैं, ये मत सोचे कि आपके परिश्रम से गिरायक आपके पास आते हैं। कई बार अच्छे से अच्छे गिरायक व्यवसायी व्यापारी होते हैं, उनके पास गिरायक नहीं आता, या गिरायक आते हैं तो नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आखिर हमारे व्यापार में या किसी भी चीज में सफल होना या नहीं होना ये भगवान के हाथ में है। केवल हमारे परिश्रम से, हमारे पैसे से नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आवश्यक नहीं है कि हम व्यापार छोड़ के घर में बैठ के या झाड़ के नीचे बैठ के हम हरे कृष्ण बोलते रहें। हमें हमारे कार्य करते रहने चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और आखिर व्यवसाय तो आप 24 घंटे नहीं करते हैं, और करते हैं तो नहीं करना चाहिए। व्यवसाय के लिए कितना समय चाहिए? पेट भरने के लिए जितना चाहिए 8 घंटे, 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा, बाकी 14 घंटा है दिन में। 14 घंटे में 7 घंटे सोएंगे, 2 घंटे खाना पीना, सब सोना, ये स्नान करना, बाकी और 5 घंटे रहे, 1 और घंटा इधर उधर अखबार पढ़ने में, इधर उधर घूमने में, बात करने में, 4 घंटे रहे। 4 घंटे में से आप थोड़ा समय भगवान को नहीं दे सकते हैं? भगवान का नाम बैठ के जाप नहीं कर सकते? उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप मंदिर आ सकते हैं, भक्तों के संग में जाप कर सकते हैं, घर में जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसलिए समय होता है। श्राद्ध में पिंड का अर्पण करना क्या ये आवश्यक है? ये तो श्राद्ध की विधि है, लेकिन जैसे हमने कहा कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए यही भजन कीर्तन, कृष्ण प्रसाद का वितरण, यही अच्छा श्राद्ध है, वही पिंड है। अभी कृष्ण प्रसाद आकर यहां हम अर्पण करेंगे संतोष के पिताजी को, तो ये पिंड हो गया। ये कृष्ण प्रसाद है जो हम अर्पण करने वाले हैं, ये भी तो पिंड है, ये भी तो हम भोग चढ़ा, हम प्रसाद दे रहे हैं भगवान का। मुलीला व मुलाला जन्म आई वडील देनास पण मुलीला श्राद्ध करण्यास अपवित्र का मानले जाते? आता ते भगवंतांनाच विचारायला पाहिजे। पण ह्याच्यासाठी पण मार्ग आहे। मार्ग काय आहे? मुलीने पण भक्त व्हायला पाहिजे, मुलग्याने पण व्हायला पाहिजे, मुलीने पण व्हायला पाहिजे। दोघं जर भक्त झाले तर मग मुलगी पण आई वडिलांचा उद्धार करू शकते। जर आम्ही भगवान कृष्णांचं भक्त झालो तर मग मुलगी असू द्या, मुलगा असू द्या, काही फरक पडत नाही। पण जोपर्यंत आम्ही भक्त होत नाही तोपर्यंत स्त्री पुरुष, मुलगा मुलगी हे सगळं महत्वाचं असतं। पण ज्यावेळी आम्ही भक्त होऊन जातो भगवंतांचा तर मग काही फरक पडत नाही। त्यामुळे उत्तर काय व्हायला पाहिजे? जर मुलगीला आई वडिलांचा उद्धार करायचं असलं, भक्त व्हायला पाहिजे, कृष्ण भक्त, मग सगळं होतं। ठीक आहे। भगवान श्री कृष्ण ने इतने हजारों पटरानियों से विवाह किया, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। क्यों? नकल करने का प्रयत्न मत कीजिए। एक परिवार को संभालना इतना मुश्किल है, है? आप में से जो गृहस्थ आश्रम है आप जानते हैं, एक पति को संभालना, एक पत्नी को संभालना कितना मुश्किल। बरोबर है कि नहीं? एक लहान घराला सांभाळायचं किती त्रास आहे. जर भगवंतांसारखं 16,108 कुटुंब स्थापित करायला गेलो तर आमची काय अवस्था होणार. म्हणजे हे एक प्रमाण आहे की ते भगवान आहेत म्हणून तेच करू शकले आणि कोणी नकल करू शकत नाही आणि कोणी करू शकत नाही. तर भगवंतांचं आणि त्यांचे जे पटराणी यांचे जे संबंध आहे ते आध्यात्मिक आहे. त्याच्यामध्ये भौतिक अजिबात काही मिश्रण नाही आहे, कलमश नाही आहे त्याच्यामध्ये. या जगाचं जे पुरुष स्त्रीचे संबंध असतं ते संबंध भगवंतांचे आणि त्यांचे भक्तामध्ये नसतं, त्यामुळे त्यांना असं ब्रह्मचारी म्हणतो. वृंदावनचे जे गोपी होते त्यांचं प्रेम भक्ती भगवंतांच्या प्रती ते सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं, कारण ते शुद्ध प्रेम आहे. त्याच्यामध्ये ह्या संसाराचं काम वासना अजिबात नाही आहे, संसाराचं काही कलमश अजिबात नाही आहे. त्यामुळे भगवान श्री कृष्णांचं प्रत्येक संबंध त्यांच्या भक्तांबरोबर आहे आणि त्यांच्या भक्तांचं जे प्रेम त्यांच्या प्रती आहे हे अतिशुद्ध असल्यामुळे, आध्यात्मिक स्तरावर असल्यामुळे भगवान श्री कृष्णांना इतके विवाह करूनही त्यांना ब्रह्मचारी म्हणतात. ठीक आहे. आणि काही संशय, श्राद्ध करने का किसका अधिकार है? अगर पिता को चार पुत्र हो तो श्राद्ध किसको करना चाहिए? ऐसे बोलते हैं कि घर में जो बड़ा बच्चा है वो सबसे प्रश्न ये है कि अगर चार पुत्र हो तो किसको करना चाहिए. वैसे सबसे बड़े पुत्र को करना चाहिए, ऐसा विधि है. लेकिन भक्त होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए सबसे आसान तरीका घुमा फिराकर बात यहीं पर आ जाती है कि सबको कृष्ण भक्त बनना चाहिए. नहीं तो वैदिक पद्धति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सरल होना है, अपने जीवन को सरल बनाना है, एक ही झटके में सारे समस्याओं का समाधान करना है तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए. बस एक साथ सारे समस्या ठीक हो जाएंगे. ठीक है. पीले प्रभुपाद के पुस्तक भी यहां रखे हुए हैं. जो भी बातें आज आपने सुनी हैं और ऐसी सारी बातें जो है भक्ति मार्ग के बारे में वो यहां आप इन सुंदर किताबों में देखेंगे जो कि पीछे प्रदर्शित किए हुए हैं. तो कृपया इन किताबों को देखिए और आप ले जाइए. अभी यह आप में से सोनार काफी है ना? सोनार संतोष भी खुद सोनार है तो सोने की कीमत आप सब जानते हैं. लेकिन ये जो सोने का तोले का कीमत कितना होता है? 5,000. और ये एक किताब कितना वजन होगा इसका? तो अगर ये सोना होता, एक किताब सोने का बना होता तो इसका कितना कीमत होता? 5,00,000. लेकिन आपको ये सोने से भी ज्यादा बढ़कर है. इसका 5,00,000,000 भी कीमत कम होगा इसके लिए. और आपको केवल कितना 50-100 जितने में जितना भी हो उतने में आपको मिलेगा. तो 50 करोड़ का माल अगर आपको 50 रुपए में 100 रुपए मिलेगा तो अच्छा सौदा नहीं है? अगर संतोष अपने दुकान में कल घोषणा करे कि तोले का कितना 5,000 तोला मैं अभी 50 रुपए में दे रहा हूं तो सारा वड़गांव सारा बेलगांव आ जाएगा, है ना? तो ऐसे ही यहां कितने करोड़ रुपए का धन आपको केवल कम इसमें मिल रहा है. मामूली खर्चा जो मंदिर को छापने के लिए लगता है उतने खर्च में आपको मिल रहा है. तो देखिए कितना अच्छा सौदा है. ये धन प्राप्त करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं. जैसे ध्रुव महाराज ने किया, विमान पर बैठ के चले गए. आपके लिए भी विमान लेके लेने के लिए आएगा. अगर आपको रिजर्वेशन करना है, वेटिंग लिस्ट में आपको नंबर लाना पड़ेगा, तो आप ये किताब खरीद के आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें जो दिया गया है ये ज्ञान को आप समझ सकते हैं और उसका जीवन में अमल कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना आनंद आपके जीवन में आएगा। ठीक है, तो श्री मंजुनाथ अण्विकर के स्मृति में हम अब कीर्तन करेंगे, तो कृपया बड़े ध्यान से और बड़े उत्साह से आप सब कीर्तन कीजिएगा। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे